तारीख 13 नवंबर दिन बुधवार। नमस्कार भारत के साथ मैं हूं मानसी दास। महाराष्ट्र में राज्यपाल शासन लागू।
ये इमरजेंसी प्रोविजन है, जब राज्य में कोई सरकार नहीं बना सकता तो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं।
आरटीआई के दायरे में होंगे चीफ जस्टिस या नहीं, आज आएगा अहम फैसला।
देश में कह रहे हैं कि सारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके सारे संपत्ति का ब्यौरा आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से ही चालू करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से चालू करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से चालू करना पड़ेगा।
वीएचपी ने कहा राम मंदिर के सरकारी ट्रस्ट में कौन रहेगा इसकी उसे चिंता नहीं।
तो हम तो बहुत दिनों से सोच कर बैठे थे कि इसका प्रबंधन आज नहीं तो कल स्कीम ऑफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही बनाएगी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। शिवसेना ने सरकार बनाने का के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। राजनीतिक शरण मिलने के बाद बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरेलेस मैक्सिको पहुंच गए हैं। मैक्सिको पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि उनकी जान को खतरा था। उन्होंने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोलिवियाई सीनेट की उप प्रमुख जीनन अनेज ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। मोरेलेस का कहना है कि वो तख्ता पलट का शिकार हुए हैं।
Finalmente quiero decirles nuevamente para que no haya más hecho de sangre, más enfrentamiento.
अंततः मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जनता की भलाई के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया था ताकि और खून खराबा ना हो, झगड़े ना हो। हम बोलिविया की सरकार आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि मैक्सिको के राष्ट्रपति ने मेरी जिंदगी बचाई है। ये थे बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवा मोरेलेस के शब्द। हांगकांग में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी है। ये हिंसक झड़प सुबह से ही शुरू हो गई थी। चाइनीज यूनिवर्सिटी में पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। छात्रों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके थे।
Our voice will come together as one together here to stop them from entering our campus. I think it's violence to our campus that we are.
कैंपस में प्रवेश करने से रोकने के लिए हम सभी एकजुट होकर प्रतिरोध करेंगे। मैं समझता हूं कि ये हमारे कैंपस पर हमला है। मैं नहीं जानता कि उनके पास यहां प्रवेश करने के लिए वारंट है भी या नहीं। ये थे एक प्रदर्शनकारी विंग लॉन्ग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेटिकन के पूर्व ट्रेजरर कार्डिनल जॉर्ज पेल को बाल यौन शोषण का दोषी ठहराए जाने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई हाईकोर्ट में एक और अंतिम अपील दायर करने की अनुमति दे दी गई है। 78 साल के कार्डिनल जॉर्ज को मार्च में 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनको 1990 के दशक में दो बच्चों के शोषण करने का दोषी ठहराया गया था। उस समय वो मेलबॉर्न के बिशप हुआ करते थे। यौन शोषण के मामले में जेल की सजा पाने वाले वो सबसे वरिष्ठ रोमन कैथोलिक अधिकारी हैं। ऐसे संकेत हैं कि अप्रवासी मामले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का समर्थन करने का रुख अपनाएगी। ओबामा शासन के दौरान 7 लाख गैर कानूनन अप्रवासियों को प्रत्यर्पित करने से बचाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को ट्रंप ने 2 साल पहले रद्द कर दिया था। जानकारों का कहना है कि कोर्ट के कंजर्वेटिव जजों की सहानुभूति व्हाइट हाउस के प्रति है। चिली की राजधानी सेंटियागो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध को और तेज कर दिया है। उनकी मांग है कि सामाजिक सुधार को बिना देर किए लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कई सड़कें जाम कर दी गईं और हिंसा के डर से यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। हालांकि अभी तक यहां प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहे हैं। इटली के अभियोजक 12 अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की जांच कर रहे हैं जिन पर संदेह है कि वो उत्तरी शहर सियना में एक मस्जिद को उड़ाने की योजना बना रहे थे। अभियोजकों का कहना है कि धमाके के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन संदिग्धों ने खतरा भांपकर अपनी योजना रद्द कर दी। गिरफ्तारी में उनके पास से दूसरे विश्व युद्ध के समय के हथियार मिले हैं। दशकों पहले नागरिक अधिकारों के आंदोलन के केंद्र में रहे अमरीकी प्रांत अलबामा की राजधानी मोंटगोमरी में पहली बार एक अफ्रीकन अमरीकन मेयर चुना गया है। स्टीव रीड को पिछले महीने चुना गया था। 60 साल पहले मार्टिन लूथर किंग इस शहर के बैप्टिस्ट उपदेशक बने थे। इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध पूर्व लड़ाके को लेकर ग्रीस और तुर्की की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब सरकार अगर बनेगी तो किसकी और कैसे। 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों की विधानसभा के लिए चुनाव नतीजे आए थे, जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अनुशंसा के बाद कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देर शाम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अभी तक ना तो कांग्रेस ने और ना ही एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने की ही कोई बात की है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है, सुनते हैं हमारे सहयोगी संदीप राय की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए एक साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, नतीजे भी एक ही दिन आए। लेकिन जहां हरियाणा में सरकार गठन हुए हफ्ते गुजर गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में अब तक सरकार नहीं बन सकी है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली बीजेपी को राज्यपाल ने सबसे पहले सरकार बनाने का न्योता दिया था, बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद शिवसेना को न्योता दिया गया, लेकिन फिर उसके 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि यह मौका एनसीपी को दे दिया गया। लेकिन सरकार न बन पाने के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स कहते हैं,
देखिए महाराष्ट्र की राजनीति साफ साफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार बनने की तरफ जा रही है।
एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर एक स्थायी सरकार बना सकेगी। समर खड़स कहते हैं,
एक्सपीरियंस हर चीज का आदमी को कैसे आता है, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बीजेपी ने भी पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी, तब एक्सपीरियंस बढ़ा है। किस तरह से जिस चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतनी कड़वी बातें कहने के बाद भी उनके साथ में अलायंस होता है, कैसे चंद्रा बाबू के साथ अलायंस होता है, कैसे नीतीश कुमार ने उनको जो है बाल और नाखून भेजे थे डीएनए के कारण और उन्हीं के साथ वो सत्ता में बैठ गए, तो ये एक्सपीरियंस हम लेंगे और सत्ता बनाएंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा।
महाराष्ट्र में ये तीसरी बार है जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यहाँ पहली बार फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो 112 दिनों तक चला। तब एक साथ 7 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। दूसरी बार सितंबर 2014 को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी। उस वक्त भी अभी की तरह सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों पार्टियों में मतभेद था। इस बार 32 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। लेकिन महाराष्ट्र में क्या अभी राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था और इसमें होता क्या है, संविधान विशेषज्ञ उल्लास बापत कहते हैं,
ये इमरजेंसी प्रोविजन है। राज्य घटना के 18th पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन दिया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है, युद्ध, परकीय आक्रमण एक्सेट्रा। 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी है और 356 में प्रेसिडेंट्स रूल है। तो ये प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है कि जब राज्य में कोई सरकार नहीं बना सकता तो राज्यपाल वैसा रिपोर्ट देते हैं और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं।
मंगलवार देर शाम कांग्रेस नेता अहमद पटेल और एनसीपी नेता शरद पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें सरकार बनाने को लेकर कोई जल्दी नहीं है। इसके ठीक थोड़ी देर बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात के संकेत दिए कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और उनकी पार्टी साथ आ सकती है।
तो कल पहली बार मैंने संपर्क किया है और मैंने कहा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम साथ अगर आते हैं तो नई दिशा राज्य को और देश को मिल सकती
है। समर खड़स मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन जल्द खत्म होगा और कल हुए घटनाक्रम से भी संकेत यही मिल रहे हैं कि शायद जल्द ही यहाँ गठबंधन वाली सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप राय। एक तरफ जिस वक्त महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात चल रही थी, उस वक्त सरकार बनाने के लिए कम समय दिए जाने से नाराज शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया था। क्या इस पर आज सुनवाई होगी और क्या सत्ता की चाबी तलाशने की कोशिश में राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी आज जारी रहेगा? महाराष्ट्र में आज किन हलचल पर नजर रहेगी, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर से।
शिवसेना ने कल शाम में सुप्रीम कोर्ट में वो गए और जब राष्ट्रपति शासन की महाराष्ट्र में बात चल रही थी, हालांकि वो शाम 5:30 बजे कल लागू कर भी दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गई थी शिवसेना ये कह के कि उनको जो समय दिया जाना चाहिए उनका क्लेम रखने के लिए, और उसके बाद उनके पास नंबर है वो गवर्नर को बताने के लिए, उतना समय उचित उनको नहीं मिला और उनको बाकी चीजों पर भी आक्षेप है। तो वो कोर्ट में गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, वहां पे सबकी नजर रखेगी अगर क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या शिवसेना की अगर पिटीशन वो पे हियरिंग होना मान लेती है तो शायद ये केस और इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग कॉम्बिनेशन की जो चर्चा है, खबरें हैं, वो चलती रहेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी ने शायद उनकी बैठकें हो, शायद उनका कुछ अप्रोच तय हुए, कोई शेड्यूल बने, सीपी और कांग्रेस ने ये कह दिया कि अब वो बात करना शुरू करेगी, क्योंकि उनको सिर्फ एक दिन पहले शिवसेना की तरफ से उन्हें अधिकृत कांग्रेस को कांटेक्ट किया गया था, कम्युनिकेशन किया गया था, और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। उनका कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग होगा कौन किसके पास मुख्यमंत्री पद रहेगा, कांग्रेस अंदर से समर्थन करेगी या सरकार को बाहर से करेगी, पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, ये तय होने के लिए बहुत उनके मीटिंग होना जरूरी है और शायद इतना भी समय जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी वेट एंड वॉच का गेम जो है वो खेल रही है, उन्होंने खुद ही बताया कि वो देखेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे।
महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। अभी हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में राज्यपाल शासन लागू है, लेकिन ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू है। अब बात झारखंड की, जहां बीजेपी की सहयोगी रही लोक जनशक्ति पार्टी ने उसका साथ छोड़ने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इससे पहले झारखंड में बीजेपी के दो सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी ने एकतरफा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। बीबीसी संवाददाता भूमिका राय ने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की और ये समझने की कोशिश की कि अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे क्या कोई खास राजनीतिक वजह है।
देखिए, मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, हमारी राज्य इकाई लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई जरूर अकेले चुनाव लड़ना चाह रही थी। राज्य इकाई का यह था कि भैया, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों का संगठन इतना मजबूत हुआ है और इतनी मजबूत कैंडिडेट की हम लोग के यहाँ ज्वाइनिंग हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग की पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी राज्य इकाई निरंतर ये चाह रही थी कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े। पर बहरहाल तो इस वक्त मेरी बातचीत चल रही थी, पर अभी तक कोई क्लैरिटी भाजपा की तरफ से आई ही नहीं, तो हम लोग भी अनंत काल तक तो इंतजार हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग को भी अपने अपने स्टेट यूनिट को जवाब देना, तो स्टेट यूनिट का फिर ये दबाव था कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, और इसीलिए आज लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया कि हम लोग लगभग 50 सीटों पे अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी।
क्या ये एक जुदा संदेश नहीं जाता है कि आप गठबंधन से अलग लड़ रहे हैं?
हम लोग गठबंधन से अलग नहीं लड़ रहे, लेकिन केंद्र में हम लोग का गठबंधन है, बिहार में हम लोग का गठबंधन है, और क्यों देश भर में हम लोग की पार्टी का संगठन है, तो इसलिए हम लोग की राज्य इकाई को ये स्वतंत्रता हम लोगों ने दी है कि हर एक राज्य में उसको पार्टी के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती के लिए जो सही निर्णय लगे वो लेने के लिए हम लोग की राज्य इकाई स्वतंत्र है। तो उसी क्रम में हम लोग की राज्य इकाई झारखंड ने ये सुझाव दिया था कि यहाँ पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी हम लोग समर्थ है। हैविंग सेड दैट, केंद्र में हम लोग का गठबंधन एकदम मजबूत है, उसी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में भी हम लोगों का गठबंधन उतना ही मजबूत है, वहां पर भी कोई संदेह नहीं है, बट हाँ बाकी से राज्य और उन राज्यों में भी हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के तहत चुनाव पर अगर नहीं होता है तो पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ रहा है। मान लीजिए अभी अगले दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में अगर समय रहते पार्टी का अगर गठबंधन नहीं होता है वहां पर और उस वक्त भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए हम लोग की राज्य का पूरी तरीके से स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए।
क्या ये एक डर भी देखा जा सकता है कि एक अपना अस्तित्व खोने का डर है इसलिए आप अलग लड़ रहे हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए ये कहीं पे किसी के अस्तित्व खोने के डर की बात नहीं है, शिवसेना की बात हो हमारी बात हो, देखिए हम तो सारे एलाइज हैं और समर्थन में हैं, बट वहीं पर कहीं पर कुछ अगर ऐसे राज्य हैं जहाँ पे तालमेल नहीं होता तो इतनी सुंदरता मुझे लगता है और हम दलों को मिलनी चाहिए कि वहाँ पर हम लोग अंतों तो हम लोग की भी अपनी पार्टी है, करोड़ों जो फैसला लगेगा वो फैसला हम लोग की पार्टी ने लिया है और भविष्य में भी लेती रहेगी।
ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल में संबल योजना शुरू की गई थी। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 200 रुपए में बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी। अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले अपात्रों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। आरोप है कि 71 लाख से अधिक ऐसे लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इनमें बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता, विक्रेता और आयकर देने वाले लोग शामिल हैं। सुनिए भोपाल से हमारे सहयोगी शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2018 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने संबल योजना की शुरुआत की। यह शुरुआत चुनाव से 6 महीने पहले की गई। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 88 लाख गरीब परिवारों को फायदा पहुंचाना था। ये वो लोग थे जिन्हें शासकीय सेवा में नहीं होना था, उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होना था और वह आयकर नहीं देते हों। लेकिन इस योजना के तहत 1,83,00,000 लोगों ने पंजीयन कराया। कमलनाथ सरकार की जांच में आया कि इसमें 71 लाख अपात्र लोगों ने फायदा लिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया,
मैं समझता हूँ 15 साल में फर्जी वाड़े के अलावा कुछ हुआ नहीं कि संबल योजना में जो कहीं ना कहीं पेश प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेता थे, इनकम टैक्स पे ही थे, इन्होंने इसका फायदा लिया संबल का और गरीब लोग उनको नहीं मिल पाया और आज इसीलिए उनके बिल आ रहे हैं बड़े बड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है और 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे FIR करके वापिस लिया जाएगा। ये हमारे मंत्री सिसोदिया जी महेंद्र सिंह सिसोदिया इन्हें इसका पूरा खाका खींच लिया है और मैं समझता हूँ कि अगली जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें ये आएगा।
आरोप है कि इसका फायदा न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उठाया बल्कि दुकानदारों और आयकर जमा करने वाले लोगों ने भी इसका खूब फायदा उठाया। वहीं कांग्रेस के एक अन्य मंत्री जीतू पटवारी का आरोप है,
भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 साल लगातार सरकार में रहे, संबल योजना बनाई, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ प्रभारियों को सरकार के पैसे का दुरुपयोग तरीके से करवाया। कमलनाथ जी की सरकार दुर्भावना वाली सरकार नहीं है, नफरत वाली सरकार नहीं है, पर वो ध्यान रखना उनका दायित्व है कि जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग जिनने किया उन पर लगाम कसे। संबल योजना जो नया सवेरा बनी है, नए सवेरे में अब अंधेरे का काम नहीं, इस तरह के जितने लोग हैं अंधेरे में रख के अपने लोगों को लाभ पहुंचाने वाले उनका तो पर्दाफाश होगा।
लेकिन इस योजना को लेकर भाजपा नेता भी सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा ही गलत है, वह गरीबों को फायदा नहीं देना चाहती है, इसलिए सारा दोष पूर्व की सरकार को दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे नुकसान गरीबों को होगा।
ऐसे बोराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। 3 क्राइटेरिया थे संबल के, नंबर 1 शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, नंबर 2 इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए और नंबर 3 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काय का घोटाला, गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पे नहीं देना तो घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा।
माना जा रहा है कि इस घोटाले की वजह से सरकार पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बोझ आया। नई सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी इकट्ठा करने में लगभग 3 महीने लग गए। अब पूरे मामले को तैयार करके इसमें शामिल लोगों पर FIR करने की तैयारी है। हालांकि भाजपा नेता सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर कोई गलत है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
और अब एक नजर दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। स्टूडियो में हमारे साथ हैं संदीप राय। संदीप जी, आज अखबारों में क्या खास है?
जी मानसी, दिल्ली से छपने वाले आज के लगभग सभी अखबारों में महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल को अपने पहले पन्ने की लीड बनाया है। सबसे दिलचस्प हेडिंग बनाई है दैनिक भास्कर ने, जिसने 2 शब्दों की हेडिंग बनाई है जिसमें लिखा है महाराष्ट्रपति शासन। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि महाराष्ट्र में चुनाव बाद घटनाक्रम में एक नया ट्विस्ट आ गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल बीजेपी के बिना पर काम कर रहे हैं। जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर लगाई है अपने लीड खबर में ही, जिसमें कहा गया है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और NCP ने शिवसेना के सामने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने की शर्त रखी है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की बात भी शामिल करने की मांग की गई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में बीजेपी ने बताया है कि उसे कुल जो चुनावी चंदे मिले थे 2018 और 19 में, उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा एक ट्रस्ट से मिला है और ये ट्रस्ट है टाटा समूह का से जुड़ा हुआ है ये ट्रस्ट, और इसने 356 करोड़ रुपए चंदे के रूप में बीजेपी को दिए थे। बीजेपी ने बताया है कि चेक और ऑनलाइन भुगतान के जरिए उसे इस अवधि में कुल 700 करोड़ रुपए मिले थे, और टाटा ट्रस्ट ने जो फंड दिया है उसमें कांग्रेस को 55 करोड़ रुपए मिले हैं और तृणमूल कांग्रेस को 43 करोड़ रुपए मिले हैं।
जी, एक खबर और बता दूं जो दी हिंदू में छपी है, राजस्थान के सांभर लेक की ये खबर है। वहाँ कई प्रवासी जो चिड़ियाँ हैं वो मरी हुई पाई गई हैं, और पर्यावरणविदों का कहना है कि इसकी वजह की जाँच की जानी चाहिए।
पर्यावरण से ही संबंधित एक खबर थोड़ी सी ये है कि दिल्ली और NCR में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, और नवभारत टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि NCR में वायु प्रदूषण दोबारा खतरनाक स्तर पर पहुंचा। इलाके में वायु प्रदूषण 400 से ऊपर रहा है सभी इलाकों में, और आने वाले दिनों में हालात और ख़राब होने के आसार हैं।
जी, ये मैं देख रही हूँ जो अपडेट है उसमें ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, नोएडा सभी जगहों पर 450 से ऊपर ही आंकड़ा जा रहा है क्वालिटी इंडेक्स का। धन्यवाद संदीप जी अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में आता है? सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच आज इस अहम मामले पर फैसला सुनाने वाली है। इस संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। इस संबंध में सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। क्या है ये पूरा मामला और इससे आम व्यक्ति को क्या मिलेगा, यही समझने के लिए BBC संवाददाता भूमिका राय ने RTI कार्यकर्ता निखिल डे से बात की।
ये एक ऐसा केस था जो लगाया गया था क्योंकि सूचनाएं मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपने एसेट को दिया या नहीं दिया ऐसा सवाल पूछा गया था, और उस पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मना कर दिया था देने से। सूचना आयोग ने कहा कि देना ही पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उनको इस प्रकार की सूचनाएं तो देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन कमीशन के फुल बेंच के पास गया, अपील में गया हाई कोर्ट में, और ये अपने आप में एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट अपील में हाई कोर्ट में गया अपने अधीन वाले कोर्ट में। हाई कोर्ट के एक बेंच ने पहले कहा देना पड़ेगा, फिर फुल बेंच ने कहा देना पड़ेगा, और वो एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप के पास अपील में गई, फिर स्टे लग गया उन निर्णयों पर, और अब इस निर्णय को सुना रहे हैं इतने समय बाद। सूचना के अधिकार के लिए सब लोग कहते हैं हाँ होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर नहीं लागू होना चाहिए, तो यहाँ कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है।
आरटीआई के तहत किन संस्थाओं या किसी व्यक्ति विशेष को रखा जाएगा, इसका आधार क्या होता है, किन लोगों के लिए RTI रखी जाएगी?
तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, तो मालिक को तो पता लगना चाहिए सब चीजों पर, और संविधान भी यही कहता है इसको छोड़ के कुछ अपवादों को। अब वो अपवाद भारतीय कानून के धारा 8 के तहत है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, जहाँ निजता का सवाल है, या जहाँ कोई अपराध किया हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो तो वो सूचनाएं नहीं मिले, इस प्रकार के 5-6 अपवाद हैं। उसके अलावा सब कुछ देना है। और संस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, भारतीय कानून में एक धारा 24 है जो कहता है कि कुछ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, उनको छोड़ के सारी संस्थाएं आई, और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी में भी कहा गया है कि यदि वो भ्रष्टाचार का मामला हो या मानव अधिकारों का मामला हो तो उसकी सूचना तो देनी पड़ेगी।
तो इस फैसले में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट से हमेशा उम्मीद रहती है, लोग जरूर कहेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो पारदर्शी होना चाहिए। अब जहां तक चीफ जस्टिस के ऑफिस का है, एसेट का, हम देश में कह रहे हैं कि सारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके सारे संपत्ति का ब्यौरा आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट से ही चालू करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय से चालू करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से चालू करना पड़ेगा, तभी हम नीचे जाके और सरकारी अधिकारियों को और MLA MPs को कह सकेंगे।
पारदर्शिता के लिए RTI जरूरी, RTI कार्यकर्ता निखिल डे से बात कर रही थी भूमिका राय। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कोर्ट ने एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने का आदेश दिया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर पहले से ही तीन ट्रस्ट बने हुए थे, जिनमें से एक है विश्व हिंदू परिषद का श्रीराम जन्मभूमि न्यास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने अब कहा है कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि सरकार के इस ट्रस्ट में कौन रहेगा और कौन नहीं। सुनिए विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को, उनसे बात कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा।
सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही संतुलन कायम किया, किसी को नाराज नहीं किया और जिसने मुकदमे में जो मांगा उसको कुछ न कुछ मात्रा में वो दे दिया। निर्मोही अखाड़े का मुकदमा रद्द कर दिया, लेकिन निर्मोही अखाड़े ने चाहा था कि हमें मैनेजमेंट मिल जाए, तो उनको मैनेजमेंट में स्थान तो ये कह दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुशलता की है, कुशलता शब्द भी अच्छा नहीं मानता, कुशलता एक चालाकी में भी आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दूरदर्शिता का और बुद्धि का परिचय दिया है उसको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बैलेंस किया है। और सरकार का काम है कि वो पहले से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो उन्होंने प्रिकॉशन ली, ये उनका काम। और समाज ने अपना मन बना लिया। मैं स्वयं कहता हूँ, मैंने 31 तारीख को, मेरे उथल पुथल चल रही थी, मैं सोचता था निर्णय आएगा 13, 14, 15 में। 31 तारीख को मैंने एक 15-20 लाइन लिखी है और कम से कम 200 संतों को व्हाट्सएप किया है कि इसे हार जीत में मत लेना महाराज, हुड़दंग ना हो, उन्माद पैदा ना करें, चिढ़ाने का काम ना करें। ये बातें मैंने लिखी नहीं, मैंने उन्माद लिखा, हुड़दंग लिखा। ऐसा ना हो कि मस्जिद के सामने जाकर ढोल ढमाका करने लगे, मोटरसाइकिल पर बैठ के स्टंटबाजी करके देश में प्रशासन को परेशान करें, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
चंपत राय जी, फैसले का जो सबसे अहम बिंदु है वो ये है कि भूमि रामलला की होगी, मंदिर बनेगा और मंदिर एक ट्रस्ट बनाएगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि जो आपका ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि न्यास, अब उसकी क्या भूमिका रह जाएगी? क्या वो ट्रस्ट रहेगा या नहीं रहेगा? आप उसका उस ट्रस्ट में विलय करेंगे? क्या आपने इस पर चर्चा की है?
अभी तो कोई चर्चा नहीं की। और दूसरी बात, हिंदू धर्म शास्त्रों का ये शाश्वत सिद्धांत है, सिद्धांत बदलते नहीं कभी, कि मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद संपत्ति ऑटोमेटिकली भगवान की है।
बिल्कुल।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है वो धर्मशास्त्रों के आधार पर किया है
जी।
और अगर वो इसे उलटता तो फिर पिछले 100 साल के अंदर जितने मुकदमे हुए होंगे वो सभी उलट जाते। तो उन्होंने तो कानून का पालन किया है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, 500 साल की लड़ाई थी। तो हम तो बहुत दिनों से सोच कर बैठे थे कि इसका प्रबंधन आज नहीं तो कल स्कीम ऑफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट ही बनाएगी
जी।
अब वो गवर्नमेंट बनाए, ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। अब तो ऑर्डर हो गया
जी।
तो हम इस बारे में कहीं दुविधा में नहीं थे, कम से कम हमारे वकील तो नहीं थे
जी।
और हमारे वकील साहब ने, जो पाराशरण साहब थे, उन्होंने तो कम से कम 1-1.5 साल पहले कह दिया था स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट। सोचो, अब तीसरा पहलू आता है न्यास। भाई हमने केवल मंदिर का मॉडल, उसका पत्थर, इतनी भूमिका हमारी है। जो भी स्कीम ऑफ मैनेजमेंट होगी उसे मंदिर बनाने ही पड़ेगा, मंदिर बनाने के लिए जनता से पैसा लेना पड़ेगा, हम उस पत्थर को दे देंगे। और भविष्य में भी जो कमी पड़ेगी हम जनता से मांगते रहेंगे, बनाते रहेंगे और उनको डोनेट करते रहेंगे। और न्यास, न्यास का संबंध, न्यास एक शाश्वत चीज है। उस न्यास की ट्रस्ट डीड में तमाम प्रकार की अच्छी भलाई के काम भी लिखे रहते हैं, वो करेंगे।
विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा। और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राजनीतिक शरण मिलने के बाद बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरेलेस मेक्सिको पहुंच गए हैं। उन्होंने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हांगकांग में पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जारी है। वेटिकन के पूर्व ट्रेजरार कार्डिनल जॉर्ज पेल को बाल यौन शोषण का दोषी ठहराए जाने के मामले में एक और अंतिम अपील दायर करने की अनुमति मिल गई है। वो 78 साल के हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि अप्रवासी मामले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का समर्थन करने का रुख अपनाएगी, ऐसा जानकारों ने कहा है। चिली की राजधानी सेंटियागो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध को और तेज कर दिया है, हालांकि अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी हैं। इटली में 12 अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है जो एक मस्जिद को उड़ाने की योजना बना रहे थे।
उनके पास से द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हथियार बरामद किया गया है। इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध पूर्व लड़ाके को लेकर ग्रीस और तुर्की के सरकारें आमने सामने आ गई हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी ताज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।